ओम शांति। निमित्त भाव के कारण सबके दिल को आप जीतते हो, सबके दिल के मीत हो, निर्माण चित्त के कारण सबका मान प्राप्त करते हो। निर्मल वाणी तो स्वयं भगवान का वरदान आपको है। इन गुणों से सब में प्राण भरते हो, ऐसे दीदी जी का बहुत बहुत दिल से सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। संगम युग सहज प्राप्तियों का युग है, परंतु कई बाबा के बच्चे सहज विधि को न समझने के कारण इस मार्ग पर चलते हुए अनेक मुश्किलातों का सामना करते या मुश्किल समझते कई बातों को। आज की जो आवश्यकता है सहज बातें समझने की और सहज प्राप्तियां करने की, बहुत सुंदर विषय लेकर हम सभी के समक्ष आदरणीय दीदी जी पधारे हैं। विषय है संगम युग की सहज प्राप्तियां, अर्थात संगम युग सहज प्राप्तियों का युग है। उसके लिए दीदी जी हमें मार्गदर्शन करेंगे और अति अति सहज सब बातें हो जाएगी, हम ऐसे अपेक्षा रखते हैं। दीदी जी का परिचय इस तरह से है। 14 वर्ष की बाल्य अवस्था में बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। लौकिक पढ़ाई में आप हमेशा अव्वल नंबर रहे। 1972 में आपने अपना जीवन मानव कल्याण के हेतु, मानवता की सेवा के हेतु बाबा के कार्य में, ईश्वरीय सेवा में अर्पित कर दिया। और परमात्मा ने भी आपका जीवन सहर से स्वीकार किया और हर पल हर घड़ी उसे सफल करा रहे हैं, करवा रहे हैं, अनेकों का भाग्य बना रहे हैं। 1972 से 1978 तक गुजरात में अनेक सेवा केंद्र स्थापन करने के लिए और बाबा के सेवा का विस्तार करने के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया। जहां कहीं आप सेवा करके आए वहां आज बड़ा वटवृक्ष तैयार हो गया है। राजयोग शिविर गुजराती में कराने के लिए निमित्त आप ही बने। राजयोग शिविर की शुरुआत आपसे ही बाबा ने करवाई। 1979 से 1992 तक भावनगर अमरेली में सबजोन इंचार्ज बनकर सेवाओं के विस्तार को बहुत बढ़ाया, प्रगति कराई, अनेक आत्माओं को बाबा पर बलिहार होने की प्रेरणा दी। 1993 से 2010 तक ज्ञान सरोवर एकेडमी में सेवाओं की मुख्य जिम्मेवारी आपने संभाली। आप विश्वविद्यालय से संलग्न RERF अर्थात राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के मुख्यालय के संयोजक हैं। देश विदेश में सेवाएं देकर अनेक आत्माओं को बाबा से जोड़ा है और बेहद सेवा का प्रमाण दिया है। वर्तमान समय शांतिवन में बेहद की सेवाएं दे रहे हैं। प्रगति, तपस्या, अनेकों की दुआएं, ये सब आपके जीवन में भरपूर हैं। ऐसे दीदी जी से हम सभी मिलकर एक नम्र निवेदन करते हैं, आप हमें संगम युग सहज प्राप्तियों का युग कैसे है इस बात से लाभान्वित करें। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग, कलयुग अंत का और सतयुग आदि के संधि जिसको हम पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहते हैं, जिसमें हम आत्माओं का परम आत्मा परमात्मा के साथ मिलन होता है। ये परमात्मा मिलन का, महामिलन का संगम युग है। और जो मिलन का समय है वो बहुत ही सुखदाई, खुशी देने वाला, भरपूरता का अनुभव कराने वाला बहुत ही सुंदर समय होता है। दुनिया में कहते हैं कि मिलन के बाद विरह होता है, लेकिन हम तो मिलन मनाते मनाते बाबा जैसे बनकर बाबा के साथ ही वापस घर में जाएंगे। तो हमें विरह का तो अनुभव ही नहीं होगा। ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग बहुत ही महत्वपूर्ण युग है, जिसको बाबा कहते हैं ये मौजों का युग है। हर पल बाबा से मिलन मनाते हुए, हर घड़ी का मौज मनाते रहना है। मौजे ही मौजे, आनंद ही आनंद, क्योंकि ये परमानंद का समय, परम प्राप्ति कराने वाला है। ये जमा करने की बैंक खुलने का समय है, क्योंकि जैसे ही संगम युग पूरा होगा, जमा करने की बैंक बंद हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही परम धाम से जिस क्षण सतयुग में हम आएंगे, उसी क्षण से ही उतरती कला शुरू हो जाएगी। सतयुग में न अज्ञान है, न माया है, न रावण है, परंतु फिर भी 1200 50 वर्ष के सतयुग में हमारी दो कला कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम आत्माएं प्रकृति और समय के संसर्ग में आती हैं, हर क्षण हमारी कलाएं कम होती जाती हैं। इसलिए कहेंगे कि जैसे ही सतयुग में हम आएंगे, हमारा माइनस का खाता शुरू हो जाएगा, फिर तो सारे चक्र में हमें पता है कि और आगे आगे उतरती कला होती जाएगी, फिर कल्प के अंत में वही संगम आएगा और हमारी चढ़ती कला शुरू हो जाएगी। अभी है हम सबने मकर संक्रांति, संक्रांति काल अर्थात चढ़ती कला का समय, जिस समय हम प्रकृति के साथ साथ, क्योंकि अभी समय भी संगम से सतयुग की ओर जाएगा, तो प्रकृति के साथ साथ अपनी दशा और दिशा बदलकर हम आत्माएं भी चढ़ती कला में जाएंगे। तो ये संक्रांति काल का समय है। बाबा कहते हैं ये सत्कर्म का बीज बोने का समय है। अभी जितने सत्कर्म हम करेंगे, हमें अनेक गुना उसका फल मिलता ही रहेगा। हमारे संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध सतयुग और त्रेता युग, 21 जन्मों की प्रारब्ध हमें मिलेगी, तो ये कितना महत्वपूर्ण युग है। परंतु अभी हमें प्राप्तियां करने का सहज युग है। उसका एक कारण है कि स्वयं भगवान आए हैं और बाबा हमारा साथी बना है। इसी जन्म में भगवान हमारा साथी बनता है, उनके हाथ और साथ से कितनी भी ऊंची मंजिल हो, हम सहज चढ़ सकते हैं। बाबा ने हमें श्रीमत दी है, भक्ति में तो हम भटकते रहे, धक्के खाते रहे। ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, महात्मा धर्मात्माओं ने समय प्रति समय आकर के अपनी अपनी मतें हमें दी। कुल मिलाकर हमें कोई एक फाइनली सर्वश्रेष्ठ मत नहीं मिली, इसलिए हम भटकते रहे, धक्के खाते रहे। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक कथा से दूसरी कथा में, एक गुरु से दूसरे गुरुओं के पास धक्के खाते रहे। यही संगम युग का समय है जब साक्षात भगवान आकर के योग्य माध्यम ब्रह्मा मुख से हमें सत्य ज्ञान देते हैं और हमें हर कर्म की श्रीमत देते हैं। तो अब किसी से पूछने की दरकार नहीं है, मुंझने की दरकार नहीं है, ना हम क्वेश्चन मार्क में आते हैं। बाबा की सर्वश्रेष्ठ मत, भल बाबा हमें कहते भी हैं कि बच्चे तुम जज करो, बाबा जो कहते हैं वो राइट है या जो गुरु शास्त्र कहते हैं वो राइट है, पर हमें बाबा की श्रीमत में, सत्य ज्ञान में पूर्ण निश्चय है और हमने परख लिया है कि बाबा ही सत्य ज्ञान देते हैं। भक्ति में भी हम गाते हैं, परमात्मा को ही पुकारते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असतो मा सतगमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्युर्मा अमृतम गमय, हमें देहभान के विनाशी बातों से निकालो और आत्मा की अजर अमर अविनाशी बातों में ले चलो। तो ये हम सदा परमात्मा को ही पुकारते रहे, क्योंकि आत्मा को अंदर से ये विश्वास है कि हम आत्माओं को गति सदगति में परमात्मा पिता ही ले चलेंगे। इसलिए गीता में भी कहा है कि भक्त आत्माओं से मुझे ज्ञानी तो आत्माएं बहुत प्रिय है, और ज्ञानी तो आत्मा से भी योगी आत्मा तो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि योगी तो मेरा स्वरूप ही है। तो हम भक्ति में ये सब क्यों लिखते रहे हैं? क्योंकि भक्ति है भावना, श्रद्धा, पर भावना सत्य नहीं भी हो सकती है। हम भावना के वश बहकते रहे, भटकते रहे, परंतु सत्य ज्ञान बाबा ने हमें हर बात का दिया। बाबा ने आकर हमें भक्ति का फल ज्ञान दिया। ज्ञान है सत्य, सब सनातन सत्यों का मूलभूत ज्ञान भगवान आकर बताते हैं, और जब बेसिक ज्ञान सनातन सत्यों का ज्ञान हमें क्लियर हो जाता है, तो उस ज्ञान के आधार पर फिर व्यक्तिगत, व्यावहारिक और व्यावसायिक बातों का निर्णय हम सहज ले सकते हैं। जब हमें व्यक्तिगत जीवन में प्राप्तियां होती है, तो हम अपने व्यावहारिक आपसी संबंधों में जो व्यवहार करते हैं, कौन सी राइट है, कौन सी बातें रॉन्ग है, कहाँ हमें क्या व्यवहार करना है, कहाँ कौन सा व्यवहार अभी नहीं करना है, ये निर्णय हम तुरंत ले सकते हैं। हमें अपने व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्र में भी कैसा संबंध निभाना है, व्यवहार करना है, वो भी हमारे में निर्णय शक्ति आ जाती है। तो बाबा बीज आत्मा को ऐसा क्योर करते हैं कि जिससे हमारा व्यावहारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, वैश्विक, पर्यावरणीय सब निर्णय, कर्म, व्यवहार सही चलते हैं। इसका कारण है कि बाबा ने हमें मूलभूत ज्ञान दिया और ब्रह्मा बाबा जनवरी मास चल रहा है, सब ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ते भी हैं और एक दो से साकार बाबा के अनुभव भी सुनते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के दिए हुए मूलभूत ज्ञान पर ऐसा मनन चिंतन मंथन करके इतनी सुंदर मुरली चलाई जो रोज साकार मुरलियां हम सुनते हैं, जिसमें हमें स्पष्ट होता है भल हम बाबा के अव्यक्त पालना के बच्चों ने साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन साकार मुरलियों में बाबा ने क्या चिंतन किया, क्या मंथन किया, प्रैक्टिकल में क्या कर्म किया, ये सब कुछ हमें स्पष्ट हो जाता है। तो 32 वर्ष साकार मुरलियां सुनी, फिर 69 जनवरी में बाबा अव्यक्त हो गए, तो 1969 से 2017 31 दिसंबर तक बाबा ने हमें अपने अव्यक्त संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त स्थिति से हमें अव्यक्त वाणी की दादी गुलजार जी के माध्यम से हम सबको लगभग 49 ऑलमोस्ट 50 वर्ष जिसको कहें बाबा ने अव्यक्ति पालना दी। आप में से भी काफी भाई बहने होंगे जिन्होंने अव्यक्त पालना प्राप्त की है, हाथ ऊपर करें। अव्यक्त पालना बहुत अच्छा, संपूर्णता की स्थिति से बाबा ने हम बच्चों को भी संपन्न और संपूर्ण बनने की गाइडलाइन दी। अभी भी अव्यक्त वाणियों का खजाना पीछे से आने वाले नए भाई बहनों के लिए प्राप्त है। जो अव्यक्त पालना समाप्त होने के बाद बाबा के बने हैं वो हाथ उठाएं, नए भाई बहने पीछे वाले हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया, बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति से आप सबको खींचा, अपना बनाया। तो उनके लिए जिन्होंने साकार पालना ली है, अव्यक्त पालना ली है, वो भाई बहने भी एक खजाने के समान है। व्यक्तिगत उनसे मिलकर हम वो मार्गदर्शन लेते रहे और अपने पुरुषार्थ को सहज बनाते रहे। तो साकार और अव्यक्त 1936 से 2017 तक बाबा ने जो कुछ साकार और अव्यक्त पालना दी, वो लेने वाले भाई बहने भाग्यशाली हैं, उनसे हम मार्गदर्शन व्यक्तिगत अपने इंटरेस्ट रखकर उनसे ये पालना लेते रहे। उसमें ऐसी सहज प्राप्ति करने की विधियां, विधान और युक्तियां हमें मिल जाएंगी कि हम अपने पुरुषार्थ को सहज बना सकेंगे। अब बाबा अपने अव्यक्त वतन में बैठकर अभी भी हमें फरिश्तेपन की पालना दे रहे हैं। हम बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं और अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन की ओर हमें खींच रहे हैं। फिर हमें दादियों की पालना मिली, साकार और अव्यक्त पालना में पली हुई, तैयार हुई ये दादियां अपने आप में बाप समान संपूर्ण थी। तो ऐसी दादियों की पालना जिन्होंने ली है वो हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा, आगे पीछे सब काफी भाई बहनों ने हाथ उठाया। वो दादियां भी हमारे सामने उदाहरण मूर्त थी, सहज हमें मिलती थी उनकी पालना से। यज्ञ पलता गया, बढ़ता गया और संपूर्ण रूप से विकसित हो गया। बाबा ने तो एक छोटा पौधा बड़ी दादी और अन्य दादियों के हाथ में दिया था, क्योंकि बाबा जब अव्यक्त हुए तो लगभग 150 केंद्र थे। फिर दादी दीदी उन्हें मिलकर पूरे भारतवर्ष में 8,000 से अधिक सेवा केंद्र मिलाए। भारत के बड़े बड़े शहरों में, तहसीलों में, कस्बों में और कुछ बड़े बड़े गांव में भी सेंटर्स खुलते गए हैं। दादियों का उमंग उत्साह यही रहा कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और दादी जानकी और दीदियों ने मिलकर विदेशों में भारत के अलावा 140 देशों में लगभग 500 से भी अधिक सेवा केंद्र खुले और देश विदेश में अलग अलग भाषा वाले, धर्म वाले, कल्चर वाले, अलग अलग गवर्नमेंट के कायदे कानून वाले देशों में भी अनेकानेक सेवा केंद्र खोले। और दादी गुलजार जी ने तो अपने अव्यक्त पार्ट द्वारा बाप दादा का माध्यम बनकर देश विदेश के लाखों भाई बहनों की ऐसी निस्वार्थ पालना की कि बरसों तक विदेशी भी और हमारे भारत देश के भाई बहने भी उसी आकर्षण में यहाँ आते रहे। इसलिए बाप दादा ने एक संदेश में कहा था कि ब्रह्मा का अपना एक मुख और तीन दिशा में जो तीन मुख दिखाते हैं, ये हमारी ये तीनों दादियां हैं, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी। तो बाबा कहते हैं ये तीनों दादियों ने बाबा को चतुर दिशा में ब्रह्मा बाप शिव बाप को प्रत्यक्ष किया है। और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अब आने वाले भाई बहनों को भी प्यारे बाप दादा अपने आकारी और निराकारी स्वरूप से इतनी पालना दे रहे हैं कि अभी भी ये अंतिम समय में आने वाले भाई बहनों को भी मधुबन में आकर बाप दादा मिलन के कार्यक्रम में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो बाबा अभी भी उनसे कराते रहते हैं। अवश्य इन नए भाई बहनों को अव्यक्ति पार्ट पूरा होने के बाद आए हुए भाई बहनों को ऐसे ऐसे अनुभव होते रहते हैं, क्योंकि इस हॉल में अब हम सब संगठित होकर बैठते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस उस समय होता है। हम सबके मन की लगन यही होती है कि बाबा से मिलना है, बाबा का भल। हम अव्यक्ति वीडियो देखते हैं, परंतु ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस का अव्यक्त वातावरण बन जाता है कि बहुत सुंदर अनुभव भाई बहनी करते हैं। तो ये सब अभी तो पता है ना कि 89वां वर्ष शिवरात्रि त्रिमूर्ति शिव जयंती पर पूरा होगा और हमारा विद्यालय 90 वर्ष में प्रवेश करेगा। अभी भी प्यारे बाप दादा, हमारी दादियां और वर्तमान समय साकार और अव्यक्त पालना लिए हुए जो निमित्त भाई बहने हैं, हमें सुंदर मार्गदर्शन देते हैं, पालना देते हैं और हम सबको सेवा का सुंदर मौका देते रहते हैं। तो अभी भी हम संगम के समय को, अपने संकल्पों को और अपने श्वासों को इन सेवा और पुरुषार्थ में सफल करते रहे। भल कोई अभी डायरेक्ट हमें कहने वाला नहीं है, परंतु निमित्त भाई बहनों के द्वारा, वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा हमें बाबा ही डायरेक्शन देते हैं, गाइड करते हैं और मुरलियों का अच्छी तरह गहरा अध्ययन करके हम श्रीमत को समझ सकते हैं और क्लैरिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा की श्रीमत और निमित्त भाई बहनों के द्वारा जो हमें सेवा और पुरुषार्थ की गाइडलाइन मिलती है, उस अनुसार अपने स्थूल और सूक्ष्म सभी खजाने हम सफल कर सकते हैं। संगम युग में हमें ऐसा ब्राह्मण परिवार जो पवित्र और योगी आत्माओं का संग मिला है, इस संग के लाभ लेते हुए हम श्रेष्ठ कर्म के बीज को प्रैक्टिकल जीवन में लाकर और संगठन के सहयोग से उसको सींच कर इसको अंकुरित करें, पुष्पित और फलित करें और इस प्रकार हम सहज प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ अभी तक संगठन के प्रोग्राम बनते रहते हैं। अब 2026 में भी बाबा क्या कराते हैं हम बच्चों के द्वारा, जिससे हमारा दुआओं का और भाग्य का खाता भरपूर होगा, ये तो मीटिंग के बाद ही आप सबको पता चलेगा। तो हमारे जो भी अलौकिक खजाने हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, योग से, दुआओं का, सेवा से, खुशी और भाग्य का, जो भी खजाने हमें मिले हैं, बाबा हमें कहते हैं, अभी भी कई आत्माएं ऐसी हैं जिनको बाबा का संदेश नहीं मिला है। तो आप सब बाबा के बने हैं, तो अवश्य बाबा दुआओं और भाग्य का खजाना आपको भी देंगे और आप भी अपने भविष्य प्रारब्ध को भरपूर कर सकेंगे। एक तो हमारी प्रत्यक्ष प्राप्तियां हैं, पुरुषार्थ किया, ज्ञान सुना, हमें खुशी, आनंद, शक्ति का अनुभव करना होता है, तो वो एक प्रत्यक्ष प्राप्तियों का अनुभव हम करते हैं। अपने अपने सेंटर में, अपने अपने ग्रुप सेंटर में, अपने अपने सब जोन जोन में, जहाँ भी पवित्र योगी ब्राह्मणों का संगठन होता है, उसका लाभ लेकर उस संगठन की शक्ति से अनुभवी भाई बहनों का जो मनन चिंतन और क्लास का हमें लाभ मिलता है, उससे अपने आप को भरपूर करके हमें स्वयं को भी संपन्न और संपूर्ण बनाना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि हर आत्मा को बाप से वर्षा लेने का हक है। बाबा ने जो अच्युत या भिलनी का उदाहरण देकर बताया कि हरेक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपना भाग्य उजागर कर सकते हैं और दुखों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु महात्माएं, छोटे बच्चे, युवा, बूढ़े, सभी को संपूर्ण बनने का हक है। बाबा ने शुरू में जो काफी वर्षों से ज्ञान में आए उनको साकार बाबा मम्मा की पालना का, फिर दादियों की पालना का, अव्यक्त बाप दादा की पालना का, वरिष्ठ हमारे दीदियों दादाओं की पालना का हमें सपोर्ट दिया। जैसे ये छत डालते हैं तो हम बांस, बंबू के स्ट्रक्चर का पहले सपोर्ट देते हैं, फिर वो छत डालते हैं। कुछ दिनों तक वो सपोर्ट रखते हैं, पर जब वो छत फिक्स हो जाती है, जम जाती है, तो धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर निकालते हैं, दूर करते हैं। ऐसे ही बाबा शुरू से आज तक आने वाले हम ब्राह्मण बच्चों को भी समय प्रति समय बड़ों के द्वारा पालना दिलाकर स्ट्रक्चर का सपोर्ट देते हैं। अब अंत नजदीक है, हम भी दुनिया के हालात देख रहे हैं। बाबा ने कहा है कि युद्ध भी कल्याणकारी है, हमें डरना नहीं है। जो महाविनाश का खेल चलेगा वो कल्याणकारी है। उस महाविनाश के खेल में हम कहां भी हैं, किसी के साथ भी हैं, पर बाबा की याद में हैं, तो न माया, न परिस्थितियां, न प्रकृति हम पर वार करेगी। तो जैसे गीता में कहा है कि हे पार्थ, अब तो युद्ध ही कल्याणकारी है, तो ये बाबा के महावाक्यों से ही गीता में लिखा गया है। शिव बाबा उवाच कि विनाश कल्याणकारी है, तुम्हें डरना नहीं है। साक्षी बनकर, त्रिकालदर्शी बनकर हम अपनी योगी महावीर स्थिति में जितना स्थित होते जाएंगे तो हम अवश्य, चाहे पीछे आने वाले भाई बहने हैं या पहले से बहुत समय से आए हुए भाई बहने हैं, जो जितना अपना मन वचन कर्म बाप समान बनाएंगे, अपना तन मन धन स्वाहा करेंगे, उतना उसमें बल रहेगा, वो भी सफलता का फल खाएंगे और बलवान बनकर, माया जीत बनकर अवश्य जगत जीत बन ही जाएंगे। है ना सबको ऐसी आशा? ओम शांति। तो ये सहज प्राप्तियों का संगठन, संगम युग, बाबा की श्रीमत, बाबा का ज्ञान, अब इसका अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। अभी हम टाइम वेस्ट न करें तेरी मेरी करने में, इस अलौकिक परिवार के भी, अलौकिक साथियों की भी कमी कमजोरियां अवगुण भूलें, चित पर न रख, हम जितना आत्मभिमानी बनकर सबकी विशेषताओं को देखते हुए मिलकर चलेंगे तो अवश्य बाबा हमें सतयुगी प्रारब्ध के अधिकारी बना ही देगा। ओम शांति। तीन मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर आशा बहन जी का क्लास होगा।